الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى أئمة الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان، أجر الله تعالى فرجه الشريف. يا ابو या अभी ठीक है, कर लूंगा। तो हमने पहले एक इस टॉपिक के ऊपर हमने पहले गुफ्तगू की थी, और ज्यादातर मोस्टली हमने आयात को डिस्कस किया था। आयात में हम बहुत ज्यादा तफसीर में नहीं गए थे आयात की। अच्छा, स्क्रीन में जो इंग्लिश नजर आ रही है तो वो मेरी इंग्लिश है, तो उसमें गलतियां अगर हैं कहें पर तो उसको आप जैसे कि आप कहें हमने देखा ही नहीं था उसको। तो गुज़श्ता जो दर्स हैं उसका एक समरी विद तफसीर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐड भी हैं उसमें। हमने ये बात समझ लिया था कि अदल और इंसाफ की तलाश और इंसाफ पसंद जिंदगी गुजारना दर हकीकत हर ह्यूमन की फितरत में या नेचर में, नेचर भी माने फितरत में खुदा ने रखा है। पहली बात तो ये थी। फिर खुदा ने जो नबी भेजे थे अपने नुमाइंदे, उनको भी जो सबसे बड़े बड़े उनके मकासिद बताए थे कि आपने जाकर जमीन को किस तरह डिजाइन करना है और इंसानी जो सोसाइटी है वो क्या हो, तो उसमें बुनियादी तरीन जो बात बताई थी वो इंसाफ या सोशल जस्टिस की बात की थी और जस्टिस की बात की थी, और कहा था कि इसके लिए आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़े और कुर्बानियां देने पड़े तो भी आप दे दें, और हमें जिन जिन नबियों की हिस्ट्री हमारे पास है उनमें हमें ये चीज मिलती है कि वाकई उन्होंने कुर्बानियां दी। और मौजूदा जो इलाही किताब है हमारे पास कुरान मजीद, उसमें खुदाए मुताल बहुत ही, जिसको उर्दू में कहते हैं, दो टोक अंदाज में, खुले लफ्जों में इंसाफ का हुक्म देता है, उसे एक फरीजा करार देता है, और यहाँ तक कि कहता है अपने मुखालिफ और दुश्मन के साथ भी इंसाफ के साथ पेश आना है। फिर ये भी हुक्म देता है कि देखें, अगर कहें हमने कहा है कि किसी नबी का बुनियादी मकसद तालीम और तरबियत है, तो इस तालीम और तरबियत के पीछे भी जो एक फिलॉसफी है वो ये है कि हम एक इंसाफ पसंद माशरे और सोसाइटी की तश्कील चाहते हैं जिसके अंदर लोग इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारें। पता नहीं ये, अच्छा जी, लिहाजा दीन बुनियादी तौर पर क्या कहता है कि इंसाफ और अदल और इंसाफ पर मबनी समाज इंसानी फितरत का हिस्सा है, और कोई भी कौम, कोई भी नेशन सआदत पा नहीं सकती है जब तक उस कौम की मेजोरिटी और या सारी की सारी इंसाफ के ऊपर जिंदगी नहीं गुजारती और इंसाफ के साथ नहीं चलती है। फिर एक दिलचस्प बात यह है कि ह्यूमंस एज ए ह्यूमंस, खुदाए मुताल कहता है कि एक दूसरे के लिए एक बॉडी के पार्ट्स की तरह है, और कभी यही बात खुदाए मुताल ने अपने नबियों के जरिए से बयान भी किया है कि आप इंसान हैं और एक इंसान दूसरे इंसान के लिए इस तरह बिहेव रखे कि जैसे कि वो एक ही बॉडी के पार्ट्स हैं, अच्छाई में, तकलीफ सहने में, बुराई में, वगैरह वगैरह। और फिर ये भी कहते हैं कि आप में जो सबसे अच्छी नेशन और अच्छी सोसाइटी कौन सी है, तो कह रहे हैं कि जिस सोसाइटी की मेजोरिटी जो लोग हैं, जो इकाई जिसको हम कहते हैं यूनिट है, वो अदल व इंसाफ की कोशिश करता है और इंसाफ के हवाले से हमेशा इंसाफ पर बुनियाद रखी हुई जिंदगी गुजारता है, बेस्ड ऑन द जस्टिस होती है उसकी लाइफ। फिर साथ में खुदा ने रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं जो एक जाती, एक फर्द, एक यूनिट की, एक इकाई की उस सोसाइटी के, उसको भी प्रोटेक्ट कर रही होती है एट द सेम टाइम, और उसका दूसरे इकाइयों के साथ, यूनिट्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ जो रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि इंसान अकेला तो नहीं जी सकता है, ला महला उसको एक सोसाइटी की शक्ल में, एक इज्तिमाही शक्ल में जीना पड़ेगा, इसलिए इंसान की डिफिनेशंस में बाज औकात ये बातें भी कही जाती हैं, तो उसको किस तरह आपने उसमें भी जस्टिस को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके लिए भी कवानीन बनाया है खुदाए मुताल ने। इसी तरह जो है जो अपने नुमाइंदे हैं उनको भी बार बार मुख्तलिफ तरीकों से ये कहता है कि आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। एक ये थी। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो ये है कि कह रहे हैं कि एक फर्द हो, एक यूनिट हो या पूरी एक सोसाइटी हो, उसकी सही तरबियत और परवरिश और इंसाफ पर बेस रखी हुई एक लाइफ और एक सोसाइटी को खुद ह्यूमन तश्कील नहीं दे सकते हैं, कितनी भी एफर्ट करें, कितना एक्सपीरियंस करें, लेकिन ये उनके बस में नहीं है कि वो खुद से सारा का सारा एक कह सकें कि कंप्लीटली सोशल जस्टिस के साथ बनी हुई एक जिंदगी है एक बंदे की या एक सोसाइटी है। इसलिए कहता है कि वही और नबुवत की हमेशा जो है आपको जरूरत रहेगी, हमेशा आप वही और नबुवत से इनकार नहीं कर सकते, उससे आपके लिए कोई राह फरार नहीं है। अगर आप ये चाहें कि एक आदिल इंसान को मैं बनाऊंगा तरबियत करके, लेकिन वही और खुदा के नुमाइंदों का उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ऐसी सोसाइटी बनाऊंगा बेस्ड ऑन द जस्टिस एंड सोशल जस्टिस वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें मैं खुदा के नुमाइंदों और वही के लिए कोई एक्सेस नहीं दूंगा, उसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकती है? आपके पास स्लाइड भी है, थोड़ा सा एक इनपुट रहे आपकी तरफ से, ऐसा क्यों कि खुद इंसान क्यों नहीं आखिर एक ऐसी सोसाइटी बना सकता है कि हमें खुदा कहता है कि आपके लिए मुमकिन नहीं है, मगर ये कि हमारी गाइडलाइन उसमें हो, ऐसा क्यों होना चाहिए? बुनियादी तौर पर जाहिर है कि इंसान के जो मकासिद हैं उसकी खिलकत के खुदा के नजदीक वो इतने अजमत रखते हैं और इतनी उसके अंदर गहराइयां पाई जाती हैं और इतनी डिटेल्स हैं कि उन मकासिद के लिए ही दर हकीकत एक ऐसी सोसाइटी को हमने तश्कील देना है, एक ऐसी सोसाइटी को हमने एक ऐसे मकसद की तरफ इंसान को लेकर जाना है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा सा पानी मुझे दे देंगे। अच्छा, आप लोगों की खामोशी क्या थी, यानी मैं इसको क्या नाम दे दूं? जी नहीं,
टाइम
आप लोग सोच में पड़ गए तो मैंने सोचा कि यार ये तो कह रहे हैं कि खुद ही बताओ तो बेहतर है। इसलिए इसलिए मैंने सोचा ये तो लगता है मेरे सामीन की तवज्जो नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। जी
सोचने के बाद बोलते हैं।
बिस्मिल्लाह, चले मैंने एक इशारा कर दिया तो आप इसमें ऐड कर दें अभी।
नहीं है कि वो अल्लाह ने क्योंकि क्रिएट किया है इंसान को, तो इसलिए अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इंसान के लिए किस तरह की जिंदगी बेहतर है, किस तरह की सोसाइटी बेहतर है।
बिल्कुल, क्रिएटर बेहतर जानता है कि कैसे मैंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है और किस तरह क्या क्या इसकी नीड्स हैं। बिल्कुल सही है, और कोई भी हो सकता है, मैंने एक इशारा कर दिया था।
की बात हो रही है तो मतलब और के बगैर हमें इंसान खुद को तो नहीं पता कि क्या डेस्टिनेशन है, क्या उद्देश्य है।
दर हकीकत बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। और कोई है इनपुट या मैं इसको थोड़ा खोलूं? मैंने ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है, आप लोगों के दिमाग में है, उसको वर्ड्स में डालते हुए जो झिझक है उसको खत्म करना है एक्चुअली।
इंसान फिर अपने पर्सनल वो नेटिव सोचने लगेगा ना, अगर उसके
पर्सनल
सामने
इंटरेस्ट को प्रेफर रखेगा, जी वो इंसाफ उसके लिए इतना आसान नहीं रहेगा, ये भी एक बात है। देखें, खुदाए मुताल के नजदीक बनीनो इंसान का जो खिलकत का मकसद है और हदफ है वो एक वसी मीनिंग्स रखता है, और उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा है, हम आगे आ रहे हैं उस तरफ भी, जिसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। अगर हम एक दफा ये कहें कि इंसान यही है जो 80 90 100 साल जीता है, तो मुमकिन है कि बास चीजें इसके लिए कर सके। बस 80-90-100 साल के बाद खत्म हो गया, लाइक एनी ट्री, एक दरख्त की तरह, एक एनिमल की तरह, कोई भी अदर एग्जिस्टेंस की तरह, उसकी लाइफ बस इतनी सी है जितनी है। मसलन फॉर फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्डिंग है, इसकी लाइफ है 200 साल, 200 साल के बाद ये खत्म हो गई, उसके बाद आगे इसकी कोई शिनाख्त नहीं, पहचान नहीं, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे या कोई और चीज बन जाएगी। अगर हम एज ए ह्यूमन को एक ऐसा एग्जिस्टेंस समझें, तो फिर तो ये सारी बातें खत्म हो जाती है, ना वही की जरूरत है, ना सोशल जस्टिस वाली उस तरीके से बात आएगी, वो बिल्कुल फिर एक जरूरत के तहत आएगी उसमें, ताकि हर किसी का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहे और एक डिसिप्लिन सोसाइटी के अंदर बरकरार रखने के लिए, ताकि क्लेश पैदा ना हो जाए, प्रॉफिट क्या कहते हैं अपने इंटरेस्ट को लेकर, बस इस हद तक हम रहेंगे। लेकिन अगर जब हम इलाही नुक्ता निगाह से देखेंगे, मैं सही जा रहा हूं
यहाँ की सोसाइटी हो रहा है
जी, यहाँ की सोसाइटीज में हो रहा है, कम्युनिज्म ने जिस वक्त बनाया था सोसाइटी, तो उनके जहन में इंसान एक ऐसा मौजूद था जिसको जो जितनी जिंदगी है उसके दरमियान उसके लिए आसानी चाहिए थी, जैसे कि अभी इनके पास है, क्योंकि इनका जो सुपीरियर जो चीज है, जहां जिसके जिसको रख कर हर चीज बनाते हैं, वो इंसान है। आपके फ्रेंच में पता नहीं एच को ऊ पढ़ते हैं, इसी वजह से फारसी जबान में ये इसी तरह लफ्ज पढ़ा जाता है, क्योंकि फ्रेंच के जरिए से आया है, तो वो कहते हैं ओमानिज्म, जबकि असल में ह्यूमनिज्म जो इंग्लिश में हम कहते हैं। तो ये ह्यूमनिज्म यानी इंसान की सुप्रीमेसी, कहते हैं सुपीरियर इंसान है, इससे बड़ा कोई और एग्जिस्टेंस है ही नहीं कायनात में, खुदा उदा वही पैगंबर वगैरह है ही नहीं, जो कुछ है इंसान एक, कहते हैं सुपीरियर इंसान है। कौन सा इंसान? वो जो 80-90 साल जीता है बस, उसके बाद क्या है? उसके बाद कोई नहीं, आगे फिर कोई बात ही नहीं हो रही, उसके बाद की तो लाइफ के बारे में ना कोई प्लान है ना कोई सोच है। तो लिहाजा जरूरी है कि हमारे पास एक मकसद है, एक मंजिल है, उस मंजिल के लिए एक रहनुमा और रहबर की भी जरूरत है, और मंजिल का एक असली हिस्सा और असली मकसद और असली हदफ हमारी आंखों से ओझल भी है हमारे। हम वहां जाके आ नहीं सकते, हम वहां जाके देख नहीं सकते, हमें उसके बारे में ज्यादा मालूम भी नहीं है। अगर वो ना हो, वो रहनुमाई हमें ना मिले, तो हम इन्हीं की तरह सोचेंगे कि जैसे कि हम तो बस ये 70-80-90 साल ही हैं, तो सारी एफर्ट्स हम इसी के लिए करेंगे, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है, हम एक लामहदूद टाइम के लिए हैं। तो जो प्लान खुदा ने दिया है वो एक लामहदूद है। एक बात, उस रास्ते को जिस रास्ते पर चलकर हमने जिंदगी गुजारनी है, थोड़ा सा हम अपने मौजू के करीब करते हैं, वो सोसाइटी, वो इंसाफ पर मबनी जिंदगी हर आदमी की, उसको सिरात मुस्तकीम कहा खुदा ने। इसीलिए ये कहा कि आप भी अपने लिए रास्ते बना सकते हैं, आप भी अपने लिए तरीके चुन सकते हैं, कवानीन बना सकते हैं जरूरत के हिसाब से, लेकिन जो मेरा रास्ता है वो सीधा रास्ता है, बाकी सारे रास्ते आपके अपने बनाए हुए हैं, आपने टेढ़, किसी ने इस तरह बनाया, किसी ने इस तरफ से बनाया है, कोई इसको ज्यादा प्रेफरली कहता है ये ज्यादा बेनिफिशियल है ह्यूमन सोसाइटी के लिए और ह्यूमंस के लिए, कोई कहता नहीं नहीं ये ज्यादा बेनिफिशियल है। तो लिहाजा कहता है सिरा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो रास्ता जो मेरा है वही सही है, और इसके लिए इस सीधे रास्ते पे आपको दिखाने एक चलाने के लिए दो मैंने रहनुमा भी भेजा है। तो अब जाहिर है कि वही हमें बेहतर बता सकते हैं। और जब हम कहते हैं, जब खुदा कहता है कि एक ऐसी सोसाइटी जो इंसाफ पर मबनी हो, तो वहां इंसाफ की डिफिनेशन भी ऐसी होगी जो सिर्फ और सिर्फ 80-90-100 साल की नहीं होगी, बल्कि अन यानी मिलियन ट्रिलियन बिलियन साल को सामने रख कर जस्टिस की बात होगी। इंसाफ की डिफिनेशन भी, सोसाइटी की जो तश्कील है वो भी, वहां पर इंसाफ का निजाम भी, ये वो फर्क है जिसको समझना जरूरी है। वगरना क्योंकि मसला यह है कि जो मुसलमान सोसाइटीज हैं वहां पर इंसाफ एक फर्द के लिए भी मुयस्सर कम आता है, और सोशल जस्टिस की तो बात बहुत ही दूर है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात दूर है, इकोनॉमिकल जस्टिस जो कि सारे के सारे दर हकीकत इसी सोशल जस्टिस के हिस्से हैं, उसकी तो दूर है। तो अल्टीमेटली ये समझते हैं, सोच में आ जाता है कि शायद ये इनका ना इनकी नाकामी और फेलियर की बुनियादी वजह इनका अकीदा है, यानी इनका दीन है, इनकी दीनी तालीमात हैं, जो इनकी सोसाइटी में जस्टिस नहीं है, इंसाफ नहीं है। इंसाफ की बात यानी बेसिक राइट्स की तरफ भी तवज्जो नहीं होती, बेसिक राइट्स की भी वायलेशन है। तो इसमें यह ख्याल आता है कि अच्छा फिर इनका दीन ही ऐसा, जबकि हकीकत इसके बरअक्स और उल्टा है। इसके बरअक्स जो बेदीन सोसाइटियां हैं, जो खुदा वही नबुवत इसके ऊपर यकीन नहीं रखती हैं, वहां पर जाहिरी तौर पर हमें एक काइंड ऑफ जस्टिस नजर आता है, कई पहलू से हमें इंसाफ नजर आता है, कई पहलू से हमें जो छुपे हुए पहलू हैं जहां बेइंसाफी का पहलू है वो हमें ज्यादातर नजर नहीं आता। और क्योंकि बेसिकली हम ह्यूमन नेचर ये है कि हम इंसाफ को पसंद करते हैं, चाहे वो इंसाफ जहां भी नजर आएगा वो हमें अच्छा लगेगा और हमारा फोकस उस पर होगा, उस इंसाफ के पीछे मौजूद बेइंसाफी की तरफ हमारी कम तवज्जो होगी, क्योंकि हमारा नेचर अपील करेगा, जाहिर है, क्योंकि फितरत में खुदा ने इंसान के लिए ये रखा है। लिहाजा ये समझना होगा कि इंसान की हकीकत, उसकी सच्चाई खत्म नहीं होती मरने से, नाबूद नहीं हो जाता इंसान कि हम कहें बस ठीक है यही है तो इसी डिफिनेशन के हिसाब से करें। और कुरान और खुदा कहता है भाई आपको जो निजाम दिया है उसमें सिर्फ आपकी ये जिंदगी को पेश नजर नहीं रखा हमने, बल्कि आपकी वो जो अनलिमिटेड जिंदगी है उसकी तरफ भी हमने तवज्जो रखा है, बल्कि असल वही जिंदगी है, तो मेन फोकस हमारा वहां पर है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो आप जानते नहीं है कि वहां आपके लिए क्या चीज बेनिफिशियल है, कौन सी चीज फायदा देने वाली है, कौन सी चीज वहां नुकसान दे रही है, इसके बारे में भी आपकी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए ला महाला वही की जरूरत पड़ेगी, एक यहाँ पर ला महाला आपको एक हमारे रहबर और रहनुमा की जरूरत पड़ेगी जो वहां की खबरें आपको दे दे और आपको ये समझाए कि ये जनाब आपकी खेती है, यहाँ पर आपने काश्तकारी करनी है, यहाँ पर आपने सारा कुछ मेहनत करना है, एक्चुअल जो रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी इनकी यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो वहां मिलेगा, और वहां मिलने का फायदा क्या होगा, क्या है, ये सारी डिटेल्स फिर हमारे पास नहीं होंगी, जिसको हम कहते हैं वही मआत, कयामत, हश्र नशर, कबूर, कब्र से लेकर मरने के बाद से लेकर यो इला योमिल कियामा, और उसके बाद जो है नामे आमाल का मरहला, तकसीम, फिर पनिशमेंट, सजा, जजा, ये सारी जो एक पूरी मेन फोकस है कुरान का, उसकी तरफ तवज्जो है। तो जब हमें इस्लामी जस्टिस के हवाले से हम बात करेंगे तो हमें ये दिमाग में ये बातें होनी चाहिए। गलती क्या होती है, जब बात आती है सोशल जस्टिस की तो फौरन हमारी नजर जाती है मुख्तलिफ माशरों की तरफ। अच्छा, यूरोप में कंपेयर टू अदर्स सोशल जस्टिस ज़्यादा अच्छा है, कई हवालों से यूरोप के दरमियान मसलन स्कैंडियन कंट्रीज हैं, या ये जो स्विस है, या मसलन जर्मन है, कंपेयर टू ये और वो इनमें ज़्यादा है, यहीं पे हम खो जाते हैं और जो असल चीज है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। इल्मे कलाम में इस चीज को बड़े सादा तरीके से हमारे जो कदीम उलमा थे उन्होंने पेश किया है, बड़े खूबसूरत और सादा तरीके से। इल्मे कलाम या इलाहियात कहते हैं जिसके चार उन्होंने स्टेजेस या मरहले हैं, मैंने उसको और सिंपल करने की कोशिश की है, क्योंकि ये कंप्लेन मुसलसल मुझे मिली है मल्टीपल जगहों से कि बाज टॉपिक में आप इतने थोड़ा सा उस पर चले जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज के अंदर जाते हैं कि वो फिर आम फहम से आउट हो जाते हैं या आपका जो सामे है वो कनेक्शन नहीं बना पाता है। तो इसलिए मैंने इसको और आसान किया है और मैं टेक्स्ट पढ़ लेता हूँ। वो 4 पॉइंट ये है। पॉइंट नंबर 1 ये है, कह रहे हैं कि इंसान को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए समाजी यानी सोशल, पोलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एक रिलेशंस की, आपस की रिलेशंस की जरूरत है ह्यूमंस को, ताकि वो एक सोसाइटी में डल सकें। कहते हैं कि सोशल जस्टिस और सबकी सबका आपस में एक कॉपरेशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, यानी सबका ताउन माशरे में इसके बगैर कायम नहीं हो सकता है। सब अगर मिल भी जाएं आपस में ताउन के बावजूद भी वो असल सोशल जस्टिस को कायम नहीं कर सकते हैं, मगर ये कि वही शरीयत और टॉप ऑफ द लिस्ट जो ड्राइव कर रहे होते हैं वो साले लोग हों, अपने बेनिफिट की तलाश में ना हों, जैसे कि आपने इशारा कर दिया। वगर ना अभी इस वक्त क्या मसला पेश आया है, अरब कंट्रीज के अंदर पैसा है, तेल की रेल पेल है, सब कुछ है, तो आप माशरे में इंसाफ क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वो साले नहीं है, साले लोग नहीं है, वहां पर भी बेइंसाफी आपको जगह जगह मिलेगी। थोड़ी सी उनकी मुखालिफत हो जाती है, उठा के जेलों में डालते, भूल जाते हैं इस बंदे को हमने जेल में डाला था, इसको कोर्ट में भी लाना है। वो कभी कोई फरियाद करके करके बंदा वहां पहुंचे तो पहुंच जाए। और बहुत सारे इसकी कई साइटों से हम देखते हैं कि बेइंसाफियां वहां मौजूद है। साले आदमी नहीं है कि दूसरों का दर्द उसे खाया जा रहा हो, दूसरों की फिक्र उसे खाया जा रही हो। मुझे याद है कि जब मैं कुम में था तो रहबर जुमा का खुतबा दे रहे थे, और उस खुतबे में आधा घंटा रिपीटेडली इस बात को ताकीद कर रहे थे कि जो मुखय्यर लोग हैं उनसे मैं अपील करता हूं, और गवर्नमेंट से भी मैं अपील करता हूं कि, और इसी तरह जो इमाम खुमैनी रिलीफ जो एक इदारा है, कुमैत इमदाद इमाम खुमैनी, उससे अपील करता हूं और हिलाल अहमर से अपील करता हूं कि हमारे पास इतने 100 प्रिजनर्स हैं जो बेचारे किसी से पैसा वापस नहीं कर सके हैं, किसी के साथ कोई डील की थी, बिजनेस डील थी, उसमें कोई नुकसान की वजह से वो बेचारे जेल में गए हैं। कहते हैं कि आप इनको आजाद कराएं जेलों से। फिर एक लफ्ज इस्तेमाल किया, ये लफ्ज रिफ्लेक्ट करता है अंबिया और अवलिया की जो मिजाज के अंदर जो चीजें होती हैं, वो सिर्फ एक रूलर नहीं होते, सिर्फ एक कानून, खुश कानून को लेके नहीं आते हैं, उनके अंदर जो एक हमदर्दी होती है अपने फॉलोअर्स को लेकर, ह्यूमंस को लेकर, फॉलोअर न भी हो तो उनको भी लेकर, वो हमने रहबर के उन जुमलों में देखा। और उन्होंने कहा कि इंसान सोचता है बाज औकात इन बेगुनाहों को जेलों में देखकर कि खुद को बेचे और इन्हें आजाद कराए। ये बहुत बड़ा जुमला है, कहा कि खुद शुरबे फरूश है, कहता खुद अपने आप को बेच डाले ताकि ये बेचारे जेल से छुड़ के आ जाए। जाहिर कानून है, डिसिप्लिन तो रखना है सोसाइटी में, कोई जुल्म तो नहीं किया है उसके ऊपर, लेकिन बेचारे अब फंस चुके हैं, गलती हो गई है तो क्यों सजा भुगत रहे हैं, उनको छुड़वा दें किसी तरीके से। तो एक जो अहम चीज है वो साले लीडरशिप की जरूरत है। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर वही बयान किया है कि खालिक जिसने बनाया है, आप में से किसी ने कहा था, वो जो है इंसानी अक्ल और फितरत के मुताबिक मुनसिफाना कवानीन ही खालिक दे सकता है। और चौथा पॉइंट इसके अंदर ये है कि कयामत के दिन जो कि जजा व सजा का मरहला आता है, वहां पर क्योंकि बुनियाद वही और इंसानी अकल है, और अगर खुदा जो है दुनिया में हमें वही की रहनुमाई न दे और कयामत में वही की बुनियाद पर जस्टिस करे, तो ये तो एक ऐसी बात हो गई कि जो बच्चों वाली बात कह सकते हैं, जिसको हम कहेंगे आपने तो दिया नहीं दुनिया में वही, नबी भेजा नहीं, कुरान आया नहीं, वही आई नहीं, अब कह रहे हैं कि वही के मुताबिक जिंदगी गुजार के क्यों नहीं आए थे, वही आई नहीं तो मैं कहां से जिंदगी गुजार लेता। यहां से एक ये खुलासा था अभी तक पिछले जितने दुरूस और आयात हमने पढ़ी थी उसका। अब हम शुरू होने हो रहे हैं यहां से एक नए फेज में, और कुछ पॉइंट्स हैं और आपकी जहमत में तमाम करने वाला हूं। यहां से एक बहस शुरू होता है कुरान मजीद भी जिसको एड्रेस करता है, और अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम सोसाइटी इंक्लूडिंग बहुत सारे आज भी शिया सोसाइटी में ये माइंड नहीं है, ये लोगों की जहनियत ही नहीं है। वो क्या है भाई, एक ऐसी इंसाफ पर मबनी सोसाइटी बनाना, एक ऐसी इंसाफ और जस्टिस फराहम करना, क्या बगैर किसी अथॉरिटी पावर कंट्रोल शॉर्ट फॉर्म में हुकूमत के मुमकिन है? एक तरफ अगर हम ये कहें कि हमने असर गईबत, हम अब शियों की तरफ थोड़ा स्पेसिफाई कर रहा हूं, एक तरफ हम ये कहें कि असर गईबत में भी अदल इंसाफ पर मबनी जिंदगी गुजारने का खुदा ने हुक्म दिया है, तो फिर आदिल रहनुमा कहां है? आप तो इनकार करते हैं कि जब तक इमाम का जहूर ना आ जाए हम तो हुकूमत बना ही नहीं सकते, सियासत में तो दखालत नहीं कर सकते, गवर्नमेंट तो तश्कील पा नहीं सकती है, तो नो गवर्नमेंट, नो अथॉरिटी, नो पावर, नो कोई रूल एंड लॉ। तो फिर आप ये बताओ अब इन लोगों को कैसे आप मुनसिफ मिजाज बनाओगे? तो मुनसिफ मिजाज एक सोसाइटी तश्कील दोगे, उसके बगैर पॉसिबल है? नहीं है जी, मैं यानी वो जो इंसाफ पसंद है, इंसाफ पसंद आदमी, यानी खुदा चाहता है कि हम में से हर एक, यानी हमारा जो नेचर है जो इंसाफ पर मबनी है, वो इंसाफ वाले बन जाएं, हर चीज में हम इंसाफ को तलाश करते हैं, घर के अंदर, घर से बाहर। जो शुरू में गुज़श्ता जो हमारा था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क अहले तशी के लिए है, यही क्वेश्चन मार्क उम्मत के लिए, पूरी मुसलमानों के लिए है। अब आप बताएं कि आज आपके पास क्या असर गैबत में शराइत हैं? अगर एक सालेह शख्स को अगर हमने ढूंढना है तो कैसे ढूंढें? मुश्तहिद ही हमारे पास, इसलिए मुश्तहिद के जहां इस्मत नहीं है वहां एक कैद लगा दिया है फौरन, कि आदिल होना चाहिए। ये अदालत इल्म के बाद जो सबसे बड़ी शर्त आ रही है फौरन, बल्कि इल्म के साथ आती है, वो अदालत। जहां अदालत खत्म, इश्तिहाद खत्म। बेशक वो आलिम दहर हो, बहरुल उलूम हो, बहरे ओकियानोस हो, ओशंस हो, उसके पास ऊपर से जो है ना सैलाब आता हो मारिफत और इल्म का, अगर उसमें अदालत नहीं है, इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है, तो वो हमारा मुश्तहिद भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर कहा कि भाई अदल इंसाफ पर मबनी सोसाइटी। एक तो ये बात कहें वो लोग कि नहीं जी, जब तक इमाम जुहूर नहीं करता ना, हम जुल्म करें, ज्यादती करें, डाके मारें, जो भी करें, हम फ्री, क्योंकि आदिल रहनुमाई नहीं है हमारे पास, तो फ्री है जैसे जिए। अब माफ करना, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो मैं पता नहीं बाद में इसको रिमूव कर सकूं तो करूं। हमारे पास ऐसे लोग गुजरे हैं, अब मैंने लफ्ज लोग इस्तेमाल किया, इशारा करके कह सकता हूं, जो इश्तेहाद के लेवल पर भी थे, बहुत से फॉलोअर्स भी रखते थे, जो कहते थे कि फला फला का माल खाया जा सकता है। ये तो इमाम खुमैनी रहमतुल्ला अलैह की बरकतें हैं कि उन्होंने आके पाबंदी लगा दी फौरन, उसको कहा कि ये क्या बात करते हो, माल उसके बाप का नहीं है, माल पब्लिक का है। मसलन एक फतवा था बाज लोगों का कि फला मुल्क के अंदर मुसलमान आबादी है और हुकूमत जो है वो जालिम है, तो हुकूमत के खजाने से आप खा सकते हैं। क्यों? हुकूमत के तो बाप की जागीर है नहीं, वो तो अवाम का है, अवाम इज ए मुस्लिम। तो आप कैसे ये फतवे दे रहे हैं? क्योंकि जब आप एक खास माइंड सेट के साथ चलेंगे कि असर गैबत में नो सोशल पोलिटिकल मूवमेंट, नो अथॉरिटी, नो गवर्नमेंट, नो पावर, तो फिर अल्टीमेट नतीजा यहां पर आ जाएगा ना। बेशक आप आयतुल्ला हैदार भी हो, लेकिन इस फील्ड में आके फिर आप पीछे हो जाएंगे, आपकी रिसर्च पता नहीं वहां पर ब्रेक लग जाएंगे उसको, कि आप ऐसे फतवे ही आ जाएंगे माजरत के साथ। ये है, ये नहीं कि ये अभी मुआसरा हिस्ट्री में ऐसी चीजें गुजरी हैं। सलवात बर मोहम्मद वाल मोहम्मद। मेरे ख्याल में हम आखिरी स्लाइड्स में हैं, शायद थोड़ी सी स्लाइड्स रह गई हैं, थोड़ी सी रह गई हैं, तो हम तीसरे सेशन में डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक दो चीजें बस वो करके खत्म करूंगा। समाजी इंसाफ हुकूमत या अथॉरिटी के बगैर मुमकिन नहीं है। कुरान मजीद में चलते हैं सूरह हदीद आयत नंबर 25 में फरमाते हैं, लकद अरसलना रुसुलना बिल बयनात, एक व अनजलना माहुमुल किताब वल मीजान, ये सारे हमने टूल्स दिए हैं, बयनात दी हैं, खुली वाज़े दलीलें दी हैं, किताब भी दी है, अदल इंसाफ करने का हुनर और गुर भी सिखाया है, और अदल इंसाफ के निफाज में जरूरत पड़ने पे कंट्रोल ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार भी दिया है। ये सब कुछ क्यों दिया है? लियकूम अन्नासु बिल किस्त, ताकि लोगों के दरमियान वो हर किस्म का अदल इंसाफ से पेश आए, जस्टिस करें, अदल इंसाफ पर मबनी निजाम बनाए। अगर नबियों का मकसद, जैसे कि बाज मेंटालिटीज हैं आज भी अनफॉर्चुनेटली, अगर नबियों का मकसद सिर्फ ये होता कि मरने के बाद क्या होना है, ये स्टोरीज हमें बताना था, सिर्फ यही बताना था, आखिरत में होगा क्या, मरोगे तो क्या होगा, उधर किस तरह की सूरत हाल है, वह सलाम, मेरा काम खत्म, आप जानो तो आपकी लाइफ जानो, मैंने उस तरफ के हालात का बता दिया क्योंकि वो तुम लोग जानते नहीं थे, मैं गैब जानता था, खुदा ने मुझे इल्म दिया है। अगर ये होता तो फिर ये सारी आयतें तो आनी नहीं चाहिए, मीजान हो, किस्त हो, बय्यिना हो, किताब हो, जस्टिस हो, अदल हो, इंसाफ हो। कहता नहीं, लियकूम अन्नास, कयाम करें, जुद्दोजहद करें, किस चीज के लिए? अदल इंसाफ के लिए, क्योंकि मालूम है अदल इंसाफ का कयाम आसानी से नहीं होगा, जुद्दोजहद करना पड़ेगा, क्योंकि रुकावटें खड़ी करेंगे लोग, जालिम आएंगे, उनको इंसाफ पसंद नहीं है, अदालत पसंद नहीं है। तो साफ ये कुरान मजीद की मैंने एक आयत दी है, पिछली दफा हमने सारी आयतें बयान की थी, ये आयत खुली ओपनली हमें बताती है, ये अदल इंसाफ का कयाम हमेशा चाहिए, हमेशा, ये जिद्दोजहद के बगैर हासिल नहीं होने वाला है। जुल्म का खात्मा बगैर रेजिस्टेंस के नहीं होने वाला, अदल का कयाम बगैर रेजिस्टेंस के, कुर्बानियों के, जिद्दोजहद के नहीं होने वाला। नबी को भी कहता है तुम में भी करना पड़ेगा ये सारी चीजें। बस पता चला कि अथॉरिटी और हुकूमत की जरूरत है, असर गैबत हो असर जहूर हो इससे कोई फर्क नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि अगर मेरी सोसाइटी में अदल इंसाफ हो तो मुझे एक आदिल लीडर की जरूरत है, आदिल दीन शिनास जो दीन को समझता हो, खुदा की वही को समझता हो, अदल इंसाफ पर चलता हो और फिर उसको पावर भी मिल जाए, तब वो एक अदल पर मबनी सोसाइटी बना सकता है। वगरना फिर ये है कि मेरी तरह मेंबर पर बैठ के अदल इंसाफ की तारीफें ही कर सकता है और इससे आगे कोई चीज बता नहीं सकता है। कुछ और मिसालें दी हैं, वो तकरार है तो मैं आपके जो है ज्यादा वो नहीं करता। अदल इंसाफ के हवाले से फिर खुदा कुछ फराइज और वजाइफ बयान करता है जिसके अंदर कहता है कि इंसाफ अफराद यानी शहरी और हुकूमत, शहरी एक दूसरे के साथ इंसाफ के साथ पेश आए, हुकूमत और शहरी का जो आपस में ताल्लुक होना चाहिए उसको भी इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। हम हुकूमत अवाम के साथ, अथॉरिटी अवाम के साथ, अवाम भी हुकूमत के साथ इंसाफ के साथ पेश आ जाए और शहरी भी आपस में एक दूसरे के साथ इंसाफ के साथ पेश आ जाए। ये एक छोटा सा मैंने रिपीटेडली एक चीज बयान किया और रसूलुल्लाह की एक हदीस, और फौरन अगली स्लाइड में जाते हैं। फरमाते हैं मा कराहतुल नफ्सिका फअकराह लिगैरिक। आपने इस हदीस का एक हिस्सा डिफरेंट तरीकों से ज्यादा सुना है लेकिन आज मैं पूरी कंप्लीट हदीस पढ़ना चाहूंगा। कह रहे मा कराहतुहु लिनफ्सिक फकराह लिगैरिक, जो चीज तुम अपने लिए बुरा समझते हो ना दूसरों के लिए भी बुरा समझो। कहता अपने लिए बुरा समझते हो दूसरों के लिए बुरा समझो, ठीक है। मा अहबबतहु लिनफ्सिक फअहबिब लिअखीक, जो तुम अपने लिए अच्छा समझते हो अपने भाई के लिए भी अच्छा समझो। ये नहीं हो सकता है मेरे लिए तो अच्छा है उसके लिए बुरा है, ये कोई मेडिसिन तो नहीं है कि कहें वो शुगर का पेशेंट है तो चीनी अच्छी नहीं है, मैं मेरे पास हेपेटाइटिस हो गया है तो मुझे चीनी अच्छी है, ये तो इस तरह का मसला तो है ही नहीं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पर, जाहिर है। फिर फरमाते हैं तकुन आदिलन फी हुक्मिक, ये वो हिस्सा है जो हमेशा मेंबरों से हम मौलवी भी मिसिंग करते हैं और आपको बताते नहीं है जो कि अहम तरीन चीज है। तकुन आदिलन फी हुक्म, कहता है जजमेंट करने में इंसाफ से काम लेना हमेशा, खुद से जज अपने आप के लिए कर रहे हो या दूसरों के लिए कर रहे हैं, किसी भी किस्म की जजमेंट कर रहे हो। मुकसितन फी अदलिक, कह रहे अदल करने में किस्त की हद तक चले जाओ यानी इंतहा तक चले जाओ कि छोटा सा भी जुल्म ना हो जाए किसी के लिए। मुहिबन फी अहलि समा मादोदू नफी सुदूर अहले अर्थ, फिर आगे उनके फजाइल बयान किया है कि क्या चीजें हैं। एक और बात जो कुरान बयान कर रहा है सूरह माईदा में आयत नंबर 8 है, कहते ये तकवा तकवा है क्या भाई, इतने दर्स हम सुनते हैं इतने दर्स हम देते हैं। तकवा की तारीफ कुरान मजीद बयान करता है, कहता है कि तकवा यानी मुनसिफ इंसाफ पसंद आदमी, कहता तकवा और इंसाफ का चोली दामन का साथ है, ये दो अलग चीजें नहीं है। एक आदमी जालिम हो एट द सेम टाइम मुत्तकी भी हो नहीं सकता है, चाहे वो जुल्म खुद से भी क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो भी जुल्म है ना, अपने आप के साथ जुल्म करना भी जुल्म है। फर्ज करें मैं पूरी रात मुझे नींद की जरूरत है लेकिन क्योंकि एक दिलचस्प गेम है मेरे पास या कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट मेरे पास है जो दिलचस्प तो है लेकिन गैर जरूरी है, मैं उसमें अपने आप को बिजी करता हूं, अपने जिस्म को थकाता हूं, आंखों को थकाता हूं, दिमाग को थकाता हूं, यह जुल्म है अपने साथ, बेइंसाफी है। मुझे एक चीज की जरूरत नहीं है लेकिन उसमें अपने आप को डाल देता हूं, यानी एक तो होता ना कि इंसान हेल्थी रहने के लिए एक्सरसाइज करता है, एक है कि फजूल जो है ऐसे अपने आप के अपने जिस्म को उसमें इन्वॉल्व कर लेता है, ये जुल्म है अपने अपने साथ भी जुल्म करना है। फरमाया ए दिलू हुआ अक्रबुल तकवा, ज़हन में रखो अदालत से काम लेना, जो सबसे उसकी जो सबसे बड़ी रिश्तेदारी है अदालत की वो तकवा के साथ है, तकवा अदालत के साथ है हमेशा, ये एक इकट्ठे हैं आपस में अलग नहीं हो सकता। फिर कहता है देखो इंसाफ इतनी अजीम चीज है, गुफ्तगू में भी इंसाफ से पेश आना, बातों में भी इंसाफ से पेश आना, लफ्जी जुल्म ना करना, लफ्जों के जरिए किसी पर जुल्म ना करना। सूरह अनआम आयत नंबर 152 फरमाते हैं वइदा कुलतुम, अगर तुम कोई बात करो फअदिलु इंसाफ के साथ बात करो, वलौ कान ज़ा क़ुरबा, चाहे ये इंसाफ करते हुए तुम्हें नजर आए कि तुम्हारा कोई पसंदीदा शख्स या रिश्तेदार शख्स, क़ुरबा तो वैसे आपको मालूम है रिश्तेदारों को कहते हैं, अपने अपना कोई बंदा ना ही क्यों ना हो, तुम्हारा फेवरेट बंदा हो, तुम्हारी फेवर में हो, तुम्हारी पार्टी का हो, तुम्हारे रिश्ते का हो उस, लेकिन इंसाफ करूं तो जरा उसको बुरा लग रहा हो। कहता है नहीं, उस चीज को मत देखो। फिर कहता है कि जहन में रखो कि खुदा हमेशा हुक्म देता है एहसान और अदल इंसाफ की। इंदल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, सूरह नहल की आयत नंबर 92 है। और एक आखिरी ऑर्डर जो कि बहुत ही सख्त किस्म का है, खबरदार किसी की मुखालिफत किसी शख्स, किसी फर्द, किसी ग्रुप, किसी पार्टी, किसी कंट्री, किसी नेशन, किसी कौम, कबीला बढ़ाते चले जाएं। घर के अंदर, फैमिलीज में से लेकर ग्लोबली सतह पर, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा मुखालिफ है, मैं बेइंसाफी के साथ पेश आऊं उसके लिए, हत्ता दुश्मन के साथ भी। मौला अली अलैहि सलाम ने अपने कातिल के साथ भी कहा बेइंसाफी नहीं कर। बहुत मुश्किल है अगर कोई ये कहे। अब मैं एक ऐसी सेंसिटिव एग्जाम्पल देने वाला हूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक जबरदस्त दलील है तो ये देते हुए जुरत के साथ बोलूंगा, ज़ायोनिस्ट के साथ भी इंसाफ से पेश आ, जो जालिम इस वक्त 32 के आसपास लोगों को मार चुके हैं, उनके साथ भी अगर तुम ऊपर तुम्हारे हाथ में कंट्रोल आए तो इंसाफ से पेश आना। इसलिए हमारे रहबर ने कुछ अरसा पहले स्पीच में कहा, हमने तो नहीं कहा इन्हें दरिया में फेंको, क्योंकि हम ऐसी बात कर ही नहीं सकते। हमने तो नहीं कहा कि सारे उनको इसराइलियों को, क्योंकि ओकुपाई हैं तो इनको उठा के दरिया में फेंको, कहा ये हमने आज तक ये बातें नहीं कहा। कुछ अरब लोग ऐसी बातें करते हैं, ये एक स्लोगन है बेसिकली। हमने कहा हम तो ये कहते हैं आप जहां पर रेफरेंडम कराएं, जो बाहर अंदर सारे बैठे हैं उनके दरमियान, अगर वो कहते हैं, मेजोरिटी कहती है कि ठीक है भाई अब आए हैं आप लोग, हम मिलजुल के बैठेंगे। फिर एग्जाम्पल दी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज और उसकी, ये है इंसाफ और आदर। अपने मुखालिफ, सरसख्त तरीन दुश्मन, अजली दुश्मन के जैसे मौला अली अलैहि सलाम अपने कातिल के बारे में भी इंसाफ से बात करते हैं, तो आज मौला अली क्या ही जो सीरत पर चलने वाला आज जमाने का सैयद अली खामेनाई है, वो भी कहते हैं इनके साथ सबसे ज्यादा लड़ाई ये चल रही है इस वक्त। कह रहे नहीं, हम आपके साथ बेइंसाफी की बात नहीं कर रहे हैं कि बस तुम दुश्मन हो मुखालिफ हो तो खत्म कर दो। नहीं, ये बात हम नहीं कर रहे, तुम वहां कर रहे हो, हम नहीं करते ये बात। तो कुरान मजीद में कहां कह रहा है, सूरह माईदा दोबारा आयत नंबर 8 का पूरा कंप्लीट हिस्सा, वो कहता है वला यजुर्रु मिनकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू, खबरदार ऐसा ना हो कि तुम किसी ग्रोह या ग्रुप या कौम या नेशन के साथ जो तुम्हारी मुखालिफत और मुखासिमत और लड़ाई हो चुकी है, बेइंसाफी के साथ पेश आओ। फिर कहता है अदलू हुवा अक़रबु लित्तक़्वा, तुम तो अहले तकवा हो, तुम अहले मारिफत हो, तुम्हें तो अपने दुश्मन और अपने मुखालिफ के साथ भी क्या करना चाहिए, इंसाफ के साथ पेश आना चाहिए। और आखिरी जुमला मौला अली का कौल, थोड़ा सा हौसला रखें, 2 से 3 मिनट लूंगा। फरमाते हैं जहन में रखो, ईमान की बुनियाद को जस्टिस और इंसाफ के ऊपर रखा गया है। मौला अली फरमाते हैं अल ईमान अला अरबाती दआइम, अला सब्र यकीन वल अदल। अजीब है कि जहाद से पहले अदल को लिया, जहाद को बाद में लाए, क्यों? क्योंकि जहाद एक ऐसा अमल है, ये तो वैसे तो बहुत है अमवाल से भी, इल्म से भी, तबलीग से भी, लेकिन स्पेसिफाई करके देखें तो जहाज तो फिर बैटल फील्ड में होता है, होती है ज्यादातर दो बदो होके रुकावटें दूर करने के लिए। इसलिए अदल को पहले लाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास वेपन आया है, ताकत आई है, दुश्मन तुम्हारा कमजोर है, तुम छा गए हो तो तुम फिर अब गुस्सा ही निकाल दो अपना, का ये कभी भी ना करना। इसीलिए मौला अली की वही मिसाल है कि हमारे इब्ने अब्दवत को गिराते हैं, गुस्ताखी करता है तो तलवार नहीं चलाते हैं, नेचुरल बात है, गुस्ताखी की तो गुस्सा आया, कहा कि मैंने अपने गुस्से और भड़ास निकालने के लिए इंतकाम की गरज से तो नहीं आया था, मैं तो खुदा की रजा के लिए आया हूँ। तलवार में भी इंसाफ के साथ चलना चाहिए दुश्मन के ऊपर। इसलिए मौला ने अदल को पहले लाया और फरमाया कि ईमान 4 चीजों के ऊपर बेस करती है, उसमें एक सब्र है, यकीन है और इंसाफ और फिर जहाद है। लिहाजा इसी तरह मौला अली फरमाते हैं हर इंसान के लिए 3 चीजों की जरूरत है। इंसान कहा है, मुसलमान और ईमान की बात नहीं की है, किसी भी सोसाइटी में बसने वाले इंसानों के लिए 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, पीस, अमन, सिक्योरिटी, पीस और अमन और सिक्योरिटी, जो इन सोसाइटीज में किसी हद तक किसी पहलू से है, बहुत से पहलुओं से नहीं है। मसलन हमारे ईमान के लिए पीस नहीं है, अखलाक के लिए पीस नहीं है यहाँ पर, परहेजगारी के लिए पीस नहीं है, लेकिन और पहलू से अमन मौजूद है यहां पर। और फरमाया आदल, इंसाफ, इन सोसाइटीज में बहुत से पहलू से इंसाफ और अदल मौजूद है, कई पहलू से मौजूद नहीं है। वल खस्ब, खस्ब कहते हैं मुआशी बेहतरी को, इकोनॉमिकल अच्छाई को, वो भी इन सोसाइटीज में मौजूद है। इन तमाम चीजों के बावजूद जो मेन चीज है, जो मफकूद है, वो ये है, ये सब कुछ हमें कबूल है क्योंकि बलाखरा इसकी हमें जरूरत है, लेकिन खुदा की हमें जरूरत नहीं है। जहां पर भी ये सारी अच्छाइयां विदाउट खुदा होगा, दुनिया में उसके लिए बेनिफिशियल होंगे, दुनिया उसकी बहश्त होगी, दुनिया में आसानियां होंगी, लेकिन आखिरत में जो हयात अबदी है उसके लिए कोई फायदा नहीं देगी। सलावात बार मोहम्मद व आली मोहम्मद।